समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आते आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमता के प्रति आकर्षित। स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर गुजरात के वड़ताल में समारोह को संबोधित किया।
हेक्टिक कैनवासिंग बाय लीडर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अंडरवे इन झारखंड ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग फॉर फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
U.S. President elect Donald Trump urges Russian President Vladimir Putin to avoid escalation in the ongoing conflict with Ukraine.
संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज से अजरबैजान के बाकू में।
And Australian filmmaker Philip Noyce is to be honored with Satyajit Ray Lifetime Achievement Award during IFFI this year. And time now for our segment Dateline India, in which we'll take a look at the National Education Day and the International Film Festival of India. National Education Day is celebrated on 11th of November every year in honour of Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of independent India and a prominent educationist. This day highlights the importance of education in shaping India's future, with 65% of India's nation's population under the age of 35. It is crucial to provide them with opportunities for quality education and skill development. Prime Minister Narendra Modi paid homage to the first education minister of independent India, Maulana Abul Kalam Azad, on his birth anniversary today. In a social media post, the Prime Minister said that Maulana Azad is remembered as a beacon of knowledge and for his role in India's freedom movement. Mr. Modi said he was also a deep thinker and a prolific writer. The Prime Minister said that the government remains motivated by his vision for a developed and empowered India.
जी हाँ अनीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं जिससे हमारे देश के युवाओं को विदेश जाने की आवश्यकता ना पड़े, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े। इतना ही नहीं, हम ऐसे संस्थान भी बनाना चाहते हैं जो विदेशों से लोगों को भारत आने के लिए आकर्षित करें। बिल्कुल सही है, और भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि तो निश्चित तौर पर न केवल हमारे युवा आगे आएंगे, इसके अलावा जो हमारी जो छवि है हमारे देश की वो भी काफी ऊपर आएगी। और भारत सरकार ने विभिन्न उपक्रमों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और इसके अंतर्गत संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत को सुदृढ़ किया गया है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। एनईपी 21वीं सदी की आवश्यकताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहती है जिससे अधिक समावेशी और आगे की सोच वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो उनकी विविध पृष्ठभूमि और जरूरतों को पूरा करता है।
And there's another scheme launched its pilot phase from January 15, 2024 to February 17, 2024 at a vernacular school in Vadnagar, Gujarat. This is called Prerna. The initiative is a week-long residential program designed for selected students from class 9 to class 12. It aims to offer an experiential and inspirational learning experience, blending heritage with innovation through state-of-the-art technology. Each week, a batch of 20 students, 10 boys and 10 girls from across the country, will participate in the program. And then there's another one, the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, Nipun Bharat. This was launched by the Department of School Education and Literacy on 5th of July 2021. The mission aims to ensure that every child in the country achieves foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 with a target completion by the year 2026.
बिल्कुल, विद्या प्रवेश की अगर हम बात करें तो पहली कक्षा के बच्चों के लिए 3 महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या प्रवेश दिशा निर्देश 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक गर्मजोशी भरा और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना है, सहज परिवर्तन सुनिश्चित करना है और सकारात्मक सीखने के अनुभव को प्रोत्साहन देना है।
And then we are talking about Deeksha. This was launched on 5th of September 2017 by the Honorable Vice President of India, Venkaiah Naidu. The platform aimed to enhance teacher training and professional development by accelerating innovative solutions and experiments in education. Deeksha empowers states and teacher education institutes, that is TIEIs, with the flexibility to customize the platform to meet their specific needs, benefiting teachers, teacher educators and student teachers across the country. Then there's Swayam Plus, which was officially launched on 27th of February 2024 by Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education. The initiative seeks to revolutionize higher education and improve employability by implementing an innovative credit recognition system for industry-relevant courses, emphasizing skill development, employability and foregoing stronger industry partnerships.
बिल्कुल, और अगर हम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मेधावी विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को हाल ही में मंजूरी दी है।
The Ministry of Education, Government of India released the All India Survey on Higher Education, AISHE, 2021-22 in January 2024. Since its inception in 2011, AISHE has been collecting comprehensive data from all registered higher education institutions across the country, covering key parameters such as student enrollment, faculty and infrastructure. The 55th edition of the International Film Festival of India, IFFI, will begin on 20th of this month in Goa. Briefing the media at the curtain raiser press conference in New Delhi today, Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan said that there has been immense response from filmmakers and audiences for IFFI. Dr. Murugan said it is one of the largest film festivals at the international level. He added that Indian cinema is playing a huge role in country's economy.
और सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू ने बताया कि सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को प्रदान किया जाएगा। श्री जाजू ने कहा कि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया फोकस देश है और महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटर मैन की एशिया प्रीमियर के साथ होगी।
The creative minds of tomorrow has been scaled up, and this time it's going to have 100 budding filmmakers showcasing their skills. Global participation is always an important key to the success of any festival, and this year has been extraordinary. We had more than 1,676 submissions coming in from 101 countries, and which actually had an array of almost 180 international films and 81 countries now being selected for this festival. Again, the highest ever. Australia has been chosen as the, and they have also agreed to be the country of focus.
He mentioned that a new award, the Best Indian Debut Director Award, has been introduced to encourage fresh talent. The secretary said that this year IFFI has received 1,676 submissions from 101 countries.
We are the world's biggest filmmaking nation. We are the world's top consumer of content, and we aspire to be the net exporter of content from our country. And we all know that the content that we make in our country entertains us, educates us, and the content that we make in our country is made at 1/1,000,000th of the cost at which the content is made outside. Festival being called as we sub-themes as Future is Now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country.
मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के जरिए नए लोगों को सीखने का मौका मिलता है।
जितने अब नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, फ्यूचर फिल्म मेकर्स, फिल्म मेकर्स ऑफ टुमारो, ये सब एक मेला है फिल्म मेकिंग का। तो ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। जो हमारी जर्नी है ये इंडियन हिंदुस्तान की जर्नी है, भारत की जर्नी है, हमारे फिल्मों की जर्नी है। हम अक्सर कहते रहते हैं यार बाहर की फिल्में इतनी अच्छी होती हैं, हमारी फिल्में ऐसी होती हैं, ऐसा जरूर नहीं। अगर ऐसे ही होती तो देखने कौन जाता। और यहीं की फिल्मों के बेस के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर बेस के ऊपर बाहर जो फिल्में जा रही हैं। अब मैं हॉलीवुड कैसे गया? बैंडेड क्वीन की वजह से। ऐसा तो नहीं मिस्टर इंडिया की वजह से तो नहीं गया, मैंने बैंडेड क्वीन बनाई, उन्होंने देखी, उसके बाद मैंने एलिजाबेथ बनाई। तो ऐसा ही होगा, यहाँ की फिल्म लोग बनाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर लोग देखेंगे ये तो अच्छी फिल्म बनाते हैं, इनका कल्चर अलग है, उसको समझेंगे, उसकी समझ के ऊपर वो फिर वो बाहर जाकर भी फिल्म बनाएंगे।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और अनीता आनंद के साथ। अनीता, अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले बेंगलुरु चलें।
जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी विल बी इनॉग्रेटिंग द 27th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट in Bengaluru tomorrow. The 3 days event will see keynote addresses by stakeholders, senior government officials and experts. More from our correspondent.
India has set a target of achieving a non-fossil fuel energy capacity of 500 gigawatts by 2030. It has also made efforts to fulfill at least half of its energy requirements through renewable energy by 2030. It is also working on reducing carbon dioxide emissions by 1 billion tons by 2030 and reduce carbon intensity below 45% by again 2030. It has the ambitious target of achieving a net zero emission target by 2070. The 3 days energy technology meet in Bengaluru starting tomorrow will dwell deep into cost-effective solutions to increase energy efficiency and energy transition towards renewable and green energy. It will also discuss the roadmap to make India self-sufficient in the energy sector. The meet will be attended by over 1,500 delegates participating in 15 technical sessions. There will be 60 papers and posters presented on this occasion. There will also be exhibitors showcasing latest technologies in the field of zero-emission mechanisms and energy-efficient systems. The focus areas for the meet are changing energy landscape, driving refinancing towards sustainable future, aligning refineries towards net zero emissions, and advances in petrochemical technologies. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और बेंगलुरु से अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश भर में भी प्रमुख स्थान है। प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को कायम रखने में वर्षों से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में आज से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 मेले आयोजित हो रहे हैं। एक ओर जहां सिरमौर जिले में धार्मिक आस्था का प्रतीक 5 दिवसीय श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेला आरंभ हो रहा है, वहीं शिमला जिले के रामपुर बुशहर में ऐतिहासिक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला भी शुरू हो रहा है।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर धार्मिक के अलावा आर्थिक व सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता रहता है। प्रदेश में कुछ ऐसे मेले भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आस्था के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से भी अहम स्थान रखते हैं। आज प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय मेलों का शुभारंभ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हो रहा है, जिनमें सर्वप्रथम सिरमौर जिले का अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला शामिल है। धार्मिक आस्था से जुड़ा ये मेला माँ रेणुका जी और पुत्र भगवान श्री परशुराम जी के पारंपरिक मिलन का प्रतीक है। दूसरी ओर आज ही शिमला जिले के रामपुर बुशहर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला भी आरंभ हो रहा है। लवी मेला व्यापारिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्व रखता है। पूर्व बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच बीच आज से करीब 300 वर्ष पूर्व हुए एक व्यापारिक संधि की स्मृति में ये मेला मनाया जाता है। लवी शब्द पहाड़ी भाषा के लोही शब्द से आया है, जिसका अर्थ है एक पतली रजाई या ऊन का कंबल। ये भी कहा जाता है कि लवी मेला भारत तिब्बत व्यापार में ऊन की वस्तुओं के लेन देन की स्मृति है। रामपुर उस समय तिब्बत से अफगानिस्तान की ओर आने वाले व्यापारिक सिल्क रूट में एक अहम पड़ाव बिंदु के रूप में कार्य करता था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस समूचे क्षेत्र में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित रहता था, इसलिए सर्दियों से ठीक पहले आयोजित होने वाले इस व्यापारिक मेले का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता था जब लोग आने वाली सर्दियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी वस्तुओं का संचय अपने पास कर लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में हाथों से तैयार ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे जिनमें बादाम, चिलगोजा, बखुमानी जैसे उत्पादों का व्यापार बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा चामुर्थी और गुंथ नस्ल के घोड़े और याक का व्यापार आज भी प्रमुख रूप से होता है। चामुर्थी नस्ल के घोड़े बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही और ढुलाई के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। मेले में किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लाखों लोग अपने उत्पादों की बिक्री के लिए यहां पहुंचते हैं। वर्षों से मनाए जा रहे ये पौराणिक मेले जहां आज भी हिमाचल की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, वहीं व्यापार के जरिए प्रदेश के आर्थिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
और अनिता, अब श्रोताओं को ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर।
जी, वेयर द एनुअल झिरी मेला इज बीइंग सेलिब्रेटेड एट झिरी विलेज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू सिटी, सिचुएटेड अराउंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू ऑन जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे हैज बीन सेट फॉर नवंबर 14 टू 24 दिस ईयर। द मेला इज हेल्ड एट झिरी विलेज एवरी ईयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा इन अक्टूबर और नवंबर। दिस मेला सिग्निफाइज द करेज, ऑनेस्टी, इनोसेंस, ह्यूमिलिटी, culture and truthfulness of a revolutionary farmer, Baba Jitto, and is attended by lakhs of devotees across the nation and abroad. More from our correspondent.
Set for November 14 to 24, 2024, the 10-day Jhiri Mela is anticipated to attract about 20 lakh visitors, making it an opportunity for government departments to actively promote schemes and programs that benefit rural populations. Various government departments will set up specialized kiosks to provide information on relevant government schemes, ensuring farmers' welfare remain central. This event is a platform to promote local craftsmen and highlight traditional arts for visitors from beyond J&K. The event is vital not only for local agriculture but for showcasing Jammu's cultural heritage. Enhanced efforts have been made to educate attendees, especially farmers, about agricultural advancement, available seeds and fertilizers. The UT administration is busy in making arrangements for the forthcoming event, including infrastructure upgradation, blacktopping of all main and link roads, regeneration and improved accessibility to Baba Talab, sanitation, public safety and responsible pricing of farming tools, etc. at the event. Besides, plan for crowd management, parking, health services and uninterrupted water and electricity supply, reaffirming the administration's commitment towards making this year's Jhiri Mela memorable and impactful event. The fair is celebrated to salute the courage of Babaji Mal, popularly known as Baba Jitto. The whole Jhiri village is magnificently decorated by the local inhabitants during the event. This Mela is associated with the supreme sacrifice of the honest farmer Baba Jitto, who was a Brahmin and great devotee of Mata Vaishno Devi and fought against injustice and laid down his life after he was cheated by the corridor of the area. He sacrificed his life for justice and righteousness. He is greatly known for his fearless character who laid down his life to defend the values of honesty and justice. During the event, various exhibition stalls depicting various technologies are set by the different departments. Awareness on various agricultural and allied sector schemes is also created among the visiting farmers. Various articles such as pots, books, toys, etc. are also sold which are based on Baba Jitto's life. Baba Jitto became very famous and he has a great regard among the farmers' community. The Jhiri Mela is an important annual congregation of farmers and other pilgrims who gather at Jhiri village to pay homage to Dogra folk hero Baba Jitto. It is a source of attraction for the devotees from across India and abroad. The Mela witnesses great hustle and bustle as pilgrims, families and various groups belonging to different communities and hailing from different parts of the country congregate there to pay obeisance to Baba Jitto and seek his blessings. People from different nooks and corners of the country also visit this spot throughout the admire and enjoy the unique place of spirituality. During the event, cultural programs depicting the Dogra culture and heritage are organized. Sports events like kabaddi, volleyball, wrestling, tug of war, etc. are also organized during the Mela. Sweet stalls, merry-go-round, giant wheel, etc. add charm to the Mela. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from RNU Akashvani Jammu.
और अनीता, खेल जगत की खबरें लेकर आनंद पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, तो आनंद कहां से शुरू कर रहे हैं आज खेल खबरें?
मुकेश, शुरुआत हॉकी से। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने पहले मैच में मलेशिया की चुनौती का सामना कर रहा है। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले मैच में दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। दूसरे मुकाबले में चीन ने थाईलैंड पर 15-0 से बड़ी जीत दर्ज की। क्रिकेट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने कल रात सेंट जॉर्ज पार्क में हुए दूसरे 2020 मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने जीत का लक्ष्य 19 ओवर में 7 विकेट पर 128 रन बनाकर हासिल कर लिया। बात टेनिस की करें तो ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज रात इटली के तुरीन में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
धन्यवाद आनंद।
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
November 11th is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Born in Mecca in 1888, Abul Kalam Azad received a traditional Islamic education at home in Calcutta from his father and other teachers. Maulana was well versed in many languages like Arabic, English, Urdu, Hindi, Persian and Bengali. He was a renowned scholar and a poet. He adopted the pen name Azad as a mark of his mental emancipation from a narrow view of religion and life.
He was drawn to journalism and politics from a young age. Two leading revolutionaries of Bengal, Arabindo Ghosh and Sri Shyam Sundar Chakravarti, inspired Maulana Azad. He joined the revolutionary movement against the British rule. Within 2 years, Maulana Abul Kalam Azad helped set up secret revolutionary centers all over North India and Bombay.
In 1912, Maulana Azad started a weekly journal in Urdu called Al Hilal. The government banned Al Hilal in 1914. Maulana Abul Kalam Azad then started another weekly called Al Balagh, with the same mission of propagating Indian nationalism and Hindu-Muslim unity. In 1916, the government banned this paper too and expelled Maulana Abul Kalam Azad from Calcutta.
Maulana Azad met Gandhiji during Khilafat agitation. Influenced by Mahatma Gandhi and his ideals, he joined Congress in 1920. Azad became the youngest person to serve as the president of the Indian National Congress at the age of 35 in 1923.
He was imprisoned several times between 1920 and 1945, including for his participation in the civil disobedience movement and the Quit India movement. Maulana Azad tirelessly advocated for a single India that would embrace both Hindus and Muslims while strongly opposing the partition.
कल तक जब तक के आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था। उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं है, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक।
मौलाना आजाद took an active part in the constituent assembly debates, particularly those related to education. He believed that India as a nation should aspire for high educational standards. As the first education minister of the country from 1947 until his death in 1958, he advocated for free and compulsory primary education for all children up to the age of 14, as he believed it was the right of all the citizens.
He established the Board for Adult Education to facilitate education among uneducated adults. He was also one of the brains behind the University Grants Commission, UGC, and played a key role in the establishment of other educational institutions like the Indian Institute of Science and various IITs.
He breathed his last on 22nd of February 1958.
और अब वक्त हुआ है कि व्यापार जगत की हलचल भी जान ली जाए.
Yeah, domestic benchmark equity indices today ended nearly flat. The 30-share BSE Sensex closed marginally up by 10 points to finish at 79,496, while the NSE Nifty 50 ended with a slim loss of 7 points to settle at 24,141. The Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at down at 77,000 rupees per 10 grams, and silver 999 fine is trading at 91,680 per kilogram when the reports last came in.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है.
And today we remember Badruddin Jamaluddin Qazi, whose birth anniversary is today, professionally and popularly known as Johnny Walker, the Indian actor, comedian who acted in around 300 films, no less. He was best known for his humorous roles in Indian films, notably being the typecast as a hapless drunkard. Johnny Walker nurtured his desire to work in films and entertain passengers while working the best busage with amusing routines, hoping that he would at some point be spotted by someone with the connection in a film. I'm playing a snippet of a song from the film Chaudhari Ka Chand.
Mere bhi ghar ho dhoom dhadakta aur baje shehnai. आज की खुशियां देख के मेरा दिल पीले अंगराई मेरे भी घर हो धूम धड़क का और बजे शहनाई मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के मेरा यार बना है दूल्हा और
और आज जन्मदिन है फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का. माला सिन्हा ने फिल्मों में लंबा सफर तय किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है. वे बांग्ला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी और बादशाह से हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने वाली माला सिन्हा ने 100 से अधिक फिल्में की हैं.
इन अ करियर स्पैनिंग 4 decades, माला सिन्हा रोज टू प्रोमिनेंस विद फिल्म लाइक गुरुदत्त प्यासा in 1957, Yash Chopra's Dhool Ka Phool. Later, she starred in over 100 film productions, including Phir Subah Hogi, Hariyali Aur Rasta, Anpad, both released in 1962. First, let's listen to one of her songs picturized on her, sung by Lata Mangeshkar.
Milti hai zindagi mein mohabbat kabhi kabhi Milti hai zindagi mein mohabbat कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी.
और माला सिन्हा ने आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपने करियर का सफर शुरू किया था और जल्दी ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रोपहले पर्दे पर पहुंच गईं. उन्होंने बांग्ला फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया था. तो उनकी इसी फिल्म आंखें का ही एक और गाना सुनते हैं.
गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म ना कर. गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म ना कर. रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने वफा.
And apart from films like that, Dil Tera Deewana, Gumrah, Bahurani, Himalay Ki Gud Mein, Aasra, Aankhein, the songs that we heard from, Do Kaliyan, Maryada. She was known as the daring diva and torchbearer of women's cinema for essaying strong female-centric and unconventional roles in a range of movies considered ahead of their times. Having received multiple awards and nominations, she was given the Filmfare Lifetime Achievement Award in the year 2018.
और माला सिन्हा की बांग्ला फिल्मों में लौह कपाट को अच्छी ख्याति मिली थी. जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से लोहा मनवाया.
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है फिर तुझे संग लेके नए नए रंग
और माला सिन्हा ने जहां आरा में शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार बखूबी निभाया था, तो एक और गाना उनका तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।